हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 66। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं चरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अत्यंत ही सुंदर शब्द है भगवान के द्वारा, और भगवान का ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है अपने भक्त के लिए। कृपया इन पवित्र शब्दों का अर्थ देखते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान यानी समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य उनका त्याग करो, माम बना मेरी एकम एकमात्र मेरी, शरणम शरण में, व्रज व्रज का मतलब होता है जाओ, अहम यानी मैं, त्वाम तुमको, सर्व समस्त पापेभ्य पापों से, मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा, मा शुच मत शुच चिंता मत करो। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। कृपया इन पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को श्रवण एवं ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम इस अद्भुत ज्ञान को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके और इसका परम लक्ष्य प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः करामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथा श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। भगवान हमें सर्वगुह्यतमं ज्ञान बता रहे हैं और अर्जुन को कहा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इष्टो सिमे दृढ़मिति मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और उसका पहले इतना कहने के बाद जो पहली बात बताई वो क्या बताई भगवान ने 65 में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिगाने प्रियोसि मे तो मेरा भक्त बनो में मन से मेरे बारे में विचार करो शरीर से मुझे प्रणाम करो वाणी से मेरे गुणगान करो मुझे नमस्कार करो मेरे भक्त बनोगे यदि हृदय से प्रेम करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं घोषणा करता हूँ। भगवान ने ऐलान कर दिया। देखो अकेले में जब करते ना कोई हम बात तो ऐसा होता है कि जब वो सामने वाला काम कर दे तो फिर बोले मैंने कब प्रॉमिस किया था मैंने तो प्रॉमिस किया ही नहीं था। लेकिन भगवान कहते प्रतिजाने मैं घोषणा कर रहा हूँ मैं सबको ऐलान अब सबके सामने बोल दिया वो तो करना पड़ेगा ना भगवान को तो बोला फिर क्या करूंगा मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊंगा। तो फिर यहाँ पर अर्जुन का ये प्रश्न हो सकता है फिर जो इतनी सारी चीजें तुमने मुझे अभी बताई कि ये करना है ज्ञान योग भी बताया कर्म योग भी बताया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी यहाँ पर तुम बोल रहे हो खाली बस मेरा नाम का स्मरण करो मेरी भक्ति करो मुझे नमस्कार करो इतना काफी है फिर मैं जब तुम्हारे धाम में आने के लिए इतना काफी है फिर क्या पहले जो बताया कर्म योग ज्ञान योग वो सब क्या इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसका आंसर देते भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज। अब इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि भगवान ने कहा है सारे धर्मों को त्याग दो और अधर्मी बन जाओ। अधर्मी बनने का मतलब धर्म को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप अधर्मी बन जाओ बल्कि धर्म का क्या मतलब होता है कि आप पराधर्म स्वीकार करो। जो वाकई में आपका धर्म है, जो आपका असली धर्म है। अब शास्त्रों में बहुत बहुत अनेकों चीजें बताई गई हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, संन्यास योग है, बुद्धि योग है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनका अंतिम संदेश क्या है? भगवान की भक्ति करना। अब ये श्रीमद् भगवद गीता है, गीता इज अ बुक ऑफ नॉलेज, हमारे सारे जीवों को असली ज्ञान प्राप्त करने का, असली ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भगवद गीता, जिससे हमें पता चलेगा कि भगवान जिसने हमें बनाया है वो हमसे क्या चाहते हैं। कृष्ण हमें जब बनाया भगवान ने, तो फिर भगवान ने कोई तो रखा होगा ना कि क्या करे ये जीव आके, तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, ये जो तुम्हारे, अब देखो ज्ञान, ये गीता इज अ बुक ऑफ नॉलेज ना, ज्ञान का क्या मतलब होता है? ज्ञान का असल मतलब है जो हमारे अंदर है उससे बाहर निकालना, यानी ये जो मेटेरियल नॉलेज है वो तो बाहर दुनिया की भौतिक चीजों की नॉलेज है। आज तक हमने जो सीखा है कि तुम्हारा धर्म क्या है, देश की सेवा करना, तुम्हारा धर्म क्या है, घर की सेवा करना, तुम्हारा धर्म क्या है, इसकी सेवा करना, तुम्हारा धर्म क्या है, उसकी सेवा, लेकिन ये तो आपके शरीर का धर्म है। अब जब गीता में पहले ही भगवान ने बता दिया कि आप ये शरीर हो ही नहीं, फिर वो आपका धर्म कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है केवल इसी के बारे में पढ़ना कि शरीर से रिलेटेड ज्ञान हासिल करना, ये रियल ज्ञान नहीं है। असल ज्ञान तो वो है जो हमें हमारे वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है, जो वास्तव में हम हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है कि उसका क्या कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं उसका कर्तव्य क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, माम एकम शरणम व्रज। श्रीमद् भागवतम की प्रथम सिकंद में जब नैमिषारण्य के ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, तो कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 11 में एक क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं कि इतने सारे शास्त्र हैं, अब शास्त्रों में तो बहुत कुछ बताया गया है, कहते हैं भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। इतने सारे शास्त्र हैं और इतनी सारी चीजें बताई गई है, बहुत कुछ है, बहुत सारे शास्त्र हैं, और हमारी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले ही बता दिया श्लोक नंबर 10 में, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंद भाग्य उपद्रता। एक तो हमारी आयु इतनी कम है और इस कलयुग में और भी बहुत सारे दोष हैं कि हमारी बुद्धि मंद है, हमें सही समझ में नहीं आता, जो पढ़ भी लेते हैं, तो आयु इतनी है कि हम शास्त्र पूरे पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ लेते हैं तो बुद्धि इतनी मंद है को उसको समझ नहीं पड़ते, और आगे उसके इतना भाग्य हमारा कम है कि शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता, और यदि कभी मिल भी जाता है तो हम इतने बेचैन रहते हैं कि हम उसका सही लाभ नहीं उठा सकते। तो ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ इतने सारे शास्त्र, तो हमें कैसे समझ में आएगा? आप क्या करो, ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा प्रसिद्ध, आप बस ये बता दो कि सारे जो शास्त्र हैं उनका सारभूत कौन सी वस्तु है जिससे सारे लोग, सारे जितने भी भूत प्राणी हैं, यहाँ पर भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्ध, जितने भी प्राणी हैं उनकी आत्मा जो है, वास्तविक में हम आत्मा हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य करने से आत्मा प्रसन्न हो जाती है वो आप मुझे बताओ, क्योंकि हम आत्मा है तो ये भौतिक कर्तव्य निभाते निभाते हमारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हम आत्मा है तो आत्मा की प्रसन्नता के लिए क्या करें? तो उसका उत्तर देते हैं सूत जी महाराज, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 6 दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 6 में बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसीदति। समस्त पुंसम यानी कि जितने भी मनुष्य हैं उनका एक धर्म परोधर्म है, आज जो हमें भगवान कह रहे हैं ना सर्वधर्मान परित्यजे, वो भौतिक धर्मों को परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं सवय पुंसाम परो धर्मो, सारे लोग के लिए एक परो धर्म है। क्योंकि देखो भगवान की दो शक्तियां बताई मैंने आपको, एक अपरा शक्ति और एक परा शक्ति। अपरा शक्ति से ये भौतिक शरीर निर्माण हुआ है, इसके सारे रिलेशंस निर्माण हुए। और भगवान की पराशक्ति जो हमारे अंदर है, जो हमारे हृदय में है, जो आत्मा है, वो वास्तव में हम हैं। और उसका धर्म क्या है, यतो भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। और कैसी भक्ति करना, अहित की या प्रतिहिता, उसमें अपने लिए कोई हित नहीं रखना कि मेरा इससे मेरा ये फायदा होगा। बस वो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो मेरा एक ही कर्तव्य है उस परमात्मा को प्रसन्न करना। अहित की अप्रतीता, उसमें कभी खंडन भी नहीं होना है, कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि मैंने 10 साल तक भक्ति की या 20 साल तक भक्ति की, कोई परिणाम नहीं निकला, बस ठीक है, बस भगवान अभी ओके, इतना काफी है मैंने तुम्हारी भक्ति। नहीं, हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, और भगवान की सेवा करना हमारा नित्य कार्य है, उसमें खंडन भी नहीं होना है। और उसकी बदली में यदि भगवान हमें हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं, हमें पारितोषक देते हैं तो भी, और यदि दंड देते हैं तो भी, उसमें कोई खंडन नहीं होना है। कंटिन्यूअस भगवान की सेवा करना ही इस जीव आत्मा का एकमात्र धर्म है। तो आज भगवान हमें उसी परो धर्म के विषय में बता रहे हैं कि सवय जितने भी सर्वधर्मान परित्यज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम, भगवान ने कहा माम एकम शरणम रहे, मेरी शरणागति। अब शरणागति का ये मतलब थोड़े कि आप कर्तव्यों को छोड़ दो। शरणागति का कर्तव्य मतलब क्या होता है, शरणागति, भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरणागति में आओ, इसका मतलब है आप जो आपने मुझे कर्तव्य दिए हैं उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करो। वो मेरे नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं आपका अंश हूं, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं वो जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा हूं। यहां अब जब हम भगवान की शरण में रहकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें पाप का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, उसमें अपराध का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अगर हो भी गया ऐसा तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि, उद्धार करूंगा। वैसे तो पाप होने का ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य नहीं रहता, वो भक्ति होती है, और भक्ति केवल शुद्ध हो सकती है। लेकिन भगवान ने कहा यदि कोई तुम्हारे मन में वासना उत्पन्न हो भी गई तो, अब देखो भगवान हमारी आध्यात्मिक प्रगति है ना, उसके अंदर दो दो दीवारें होती हैं। एक तो हमारे मन की वासना होती है जो हमें कृष्ण से दूर करती है, आध्यात्मिक प्रगति में हमें रोकती है, इसको तो आप सब जानते हो ना, मन की वासना होती है। और दूसरा क्या होता है, एक होता है संशय, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर भगवान उन दोनों के विषय में बता रहे हैं कि अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे मन की जो वासना है, तुम्हारी जो दुर्भावनाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर लस्ट है, उसको तो मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पापे भी हो मोक्ष ही शामी। लेकिन आगे कहा मां शुच, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें शक नहीं करना है, तुम्हें शंका नहीं करनी है। यानी कि ये जो भगवान जो आज हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उसकी एक ही शर्त है जो भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 39 में हमें बताई थी। क्या कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। भगवान ने कहा श्रद्धा तो तुम्हें रखनी होगी, और यदि तुम मेरे वचनों में श्रद्धा रखकर मेरे शरणागत होकर कार्य करोगे तो उसमें यदि कोई अपराध होता है तो मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि, तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन श्रद्धा, अब देखो दो दीवारें हैं, एक हमारा जो सूक्ष्म शरीर, एक तो ये भौतिक शरीर है जो पांच तत्वों से मिलकर बना, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन बुद्धि और अहंकार। अब दो चीजें हैं, मन से क्या उत्पन्न होती है, वासना उत्पन्न होती है, और बुद्धि से क्या उत्पन्न होती है, शंका। भगवान ने कहा मन कंट्रोल नहीं होता ना तुम्हारे, मन को कंट्रोल मत करो। अगर वासना उत्पन्न होती है तो मैं तुम्हारे अपराधों को, अहम तो आम सर्व पापे भी, मैं अपराध जो हृदय में तुम्हारे मन में आ रहे हैं उसको मैं खत्म करूंगा, लेकिन बुद्धि के अंदर जो शंका है वो आप खुद खत्म करना। अब इस श्लोक में एक शब्द आया है व्रज। आया ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब व्रज का क्या मतलब होता है, जाओ। भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन सामने रथ पर बैठे हुए हैं और भगवान खड़े, तो भगवान को क्या बोलना चाहिए था, मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम आओ, आना चाहिए ना। लेकिन भगवान ने क्या लिखा है, व्रज यानी जाओ। अब यहाँ पे भगवान का क्या भाव है, अब व्रज का और भी एक जाओ के अतिरिक्त भी एक मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि जो भाव व्रज की गोपियों का है, यानी कि जो आज भगवान हमें ये जो बता रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी कि वो जो ब्रज गोपियों का भाव है ना, वो होना चाहिए कि उनके ऊपर। देखो अभी ब्रज गोपियां जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तो गोपियां अनेक प्रकार के धर्मों में कार्य कर रही थी, कुछ ना ब्याही थी, उनकी शादी हो गई थी तो उनके अपने कर्तव्य थे, कुछ अभी शादी भी नहीं हुई थी, उनके माता पिता के प्रति जो कर्तव्य थे वो सारे कर्तव्य महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब कृष्ण ने उन्हें बुलाया तो क्या किया उन्होंने, अपने समस्त कर्तव्यों को छोड़कर, ये यानी कि जब भगवान की आज्ञा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। यानी कि हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम अगर जिंदगी की समस्त बहुत सारी कुछ लोग बोलते हैं इतनी ड्यूटीज हैं कि कृष्ण के लिए टाइम नहीं निकलता, लेकिन कृष्ण के लिए टाइम निकालना है, ड्यूटीज को इतनी इम्पोर्टेंस, अगर ड्यूटी इम्पोर्टेंट होती है लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम उन ड्यूटीज के लिए अपने जीवन को खत्म कर दें। और मेन जो हमारा कार्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का पवन, आज तो ये करना ही नहीं है, पहले क्या किया था गोपियों ने, गोपियां क्या करती थी, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां बताती हैं गोपी गीत में, कृष्ण बहुत सारे कर्तव्य हैं हमारे, लेकिन जब तुम बांसुरी बजाते हो तो पता है क्या होता है, गोपियां भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में के 31वें अध्याय में गोपी गीत में बहुत ही सुंदर भगवान को कहती है, पति सुतान्वया भ्रातु बांधवान अति विलंघ्यते त्यच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता केतव योषिता कस्त्यजेनिशी। कृष्ण हमारे कितने सारे कर्तव्य हैं, पति सुतान वया भ्रातु बांधवान, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, बंधु है, भाई है, सबके प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य है, लेकिन अति विलंघ्यते, जब तुम जब ये अच्युत जब तुम बोलते हो, जब तुम बुलाते हो, तो हम उन समस्त कर्तव्यों का लांग कर देते हैं, उन समस्त कर्तव्यों को पार कर देते हैं, और गति विदस्तवो गीत मोहित। क्यों करते हैं, क्योंकि जब तुम बांसुरी बजाते हो तो उसका जो वो आवाज आती है ना हमारे कानों में, तो इतना उद्गन इतनी ज्यादा ओद्घ जो आवाज होती है ना, इतनी हमें बेचैन कर देती है। वास्तव में क्या है, बाकी जो भगवान के जो बांसुरी की जब भी भागवत में बात आती है ना, तो उसने कहा इतना मधुर गीत है, लेकिन यहाँ पर गोपियां क्या करी, इतनी जोर से आवाज आती है कि हम कोई कार्य कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इतना जोर जोर से बात, लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी छोटी सी भी आवाज हमें इतना तड़पा देती है कि हम अपने सारे कार्य, जैसे एक माँ अब एक बच्चे को सुला के जब जाती है किचन में, काम कर रही होती है, बेड पर सो रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान उसी में होता है कि कभी अभी जाग ना जाए, स्लो स्लो कार्य कर रही होती है, अभी जाग ना जाए, क्योंकि अभी उसने करवट बदलना सीखा है, जागेगा तो कहीं बेड से गिर ना जाए, पूरा ध्यान उसमें होता है। सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बल्कि बेटे भी अगर होंगे ना, माँ किचन में काम कर रही होगी, अब बच्चा सिर्फ जोर थोड़ा सा बोलेगा ऐसी आवाज भी निकलेगी, तो भी वो सारे काम छोड़ के चली जाएगी भाग भाग के, कि जाग गया है, कहीं उसको कोई चोट ना पहुंचे, कोई क्षति ना पहुंचे। उसी तरह से जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो वो अगर थोड़ा सा भी आवाज देता है ना हमें, तो वो हमें आ सकता है। हम भले उस टाइम पर हम कोई भी कार्य में, लेकिन प्रेमी के प्रति सचेत होते हैं, प्रेमी के प्रति हमारा पूरा भाव होता है कि वो कभी भी हमें ऐसे, कभी ऐसा होता है ना SMS की घंटी बहुत स्लो रखते हैं, लेकिन पता होता है इस टाइम पर मैसेज मेरे प्रेमी का है, तो फौरन से पता चल जाता है कि नहीं, किसी और के देखने से पहले में, क्योंकि सचेत होता है मनुष्य उसके लिए जिससे प्रेम करता है। तो गोपियां कहती हैं कि बहुत सुंदर भाव है, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधुओं और कुल परिवार का त्याग करके उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ पर आई हैं। यानी कि आपने जो संकेत किया है कि अब आप हमें अपने साथ चाहते हो, तो अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर, लेकिन इस कलयुग में कुछ नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि इस कलयुग में आपको अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना है। करना क्या है? इतना इजी कर दिया भक्ति को, इतना शरणागति का मतलब इजी कर दिया कि बस आपको चार नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है और हो गई आपकी शरणागति। बस इतना ही करना है, इसके लिए समय निकालना है, एनी हाउ निकालना। ये नहीं सोच सकते हम कि हम इसके लिए समय नहीं निकाल सकते। चार नियम का पालन करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, 16 माला जप करनी, जो खाना है भगवान को प्रसाद अर्पण करके फिर खाना। कितनी ईजी कर दी है भक्ति। और भगवान ने क्या कहा, ऐसा यदि करोगे, यदि श्री प्रभुपाद से किसी ने कहा था कि शास्त्रों में तो इतने सारे नियम लिखे हुए हैं कि ये करना होता है भगवान की भक्ति के लिए, बहुत सारे करना होते हैं कार्य, और आपने इतना इजी करके बता दिया, तो क्या इतने थोड़े से हम भगवान की भक्ति करेंगे, सिर्फ 16 माला का जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, तो क्या भगवान हमें अपने पास स्वीकार कर लेंगे? तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा जी हाँ कर लेंगे। अगर आपको किसी शुद्ध भक्त शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो फिर उन्होंने क्या क्या हमें प्राप्त है? श्री प्रभुपाद ने कहा मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तुम एज इट इज को श्रवण करोगे और इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे और 16 माला का जप करते हुए केवल प्रसाद का सेवन करोगे, तो फिर मैं गारंटी देता हूं कि आपको भगवान जो है वो अपने पास स्वीकार कर देंगे। और भगवान स्वयं कहते हैं यही है शरणागति, यदि आप इस तरह से मेरे पास शरणागति हो जाओगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं बैठा हुआ हूँ, अगर कोई पाप होता है तो मैं तुम्हें उसे मोक्षयिष्यामि, तुम्हारा उद्धार उससे करूंगा। भगवान ने पहले तो ये कहा था, आपको याद होगा श्लोक नंबर 7.28 में भगवान ने कहा येषां तुण्डगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ति मां दृढ़व्रता। कि मेरी शरण में केवल वही आ सकता है जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः नाश हो चुका है, वही मेरी शरण में आ सकते हैं, वही मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते। लेकिन यदि किसी शुद्ध गुरु के माध्यम से हमारे अपराध भले कितने भी हो, आज अगर हम किसी शुद्ध गुरु के माध्यम से भगवान की शरण में चले जाते हैं तो पूर्व समस्त अपराधों को खत्म करने का ठेका भगवान लेते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा हो, वो बार बार अपने कपड़े गंदे करके आता है या गट्टर में खेलता है, तो माँ क्या बोलती है, अभी तुम बड़े हो गए हो, ये गंदे कपड़े वपड़े नहीं किया करो, मैं अगर तुम इतने गंदे हो गए ना तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा, आप क्या करो पहले जाओ साफ होके आओ फिर मेरे पास आओ, ठीक है? फिर अब अगर वो बच्चा इतना छोटा होता है, मासूम होता है और असहाय होता है, तो रोना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे, अब मेरे से गंदा हो गया है, मैं कैसे साफ करूं, नहीं आ रहा होता है। तो माँ इतनी करुणामयी होती है कि उसको वापस से साफ करती है, डांटती भी है पहले, बोलती है कि नहीं अभी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी उसने खराब किया तो वापस माँ क्या है उसके अंदर इतनी करुणा होती है, वापस उसको साफ करती है, फिर प्रेम करती है। तो भगवान यहाँ पर अपनी करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो कह दिया 7.28 में कि तुम जब तक पवित्र नहीं हो सकते तब तक भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन आज कह रहे हैं कि ठीक है अगर पवित्र नहीं भी हुए ना अगर अपराध होते हैं ना तुमसे, तो भी तुम मेरी शरण में आ जाओगे ना, मैं बैठा हूं ना, तुम्हारे अपराधों को मैं स्वयं ही खत्म कर दूंगा। तुमको खाली क्या करना है, मेरी शरण में आना है, मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करना है, मेरे पवित्र नाम का जप करना है, और बस बस मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शंका करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे समस्त अपराधों का खंडन कर दूं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विद्या बताई। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। यानी अब तक जो कुछ हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ के आए हैं, उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी बताए कि बहुत कुछ बताया, ब्रह्म का ज्ञान भी बताया, परमात्मा का ज्ञान भी बताया, ज्ञान और संन्यास की विधि बताई, इंद्रियों को कैसे संयम करना है, मन को कैसे दमन करना है, ध्यान कैसे करना है, और बहुत प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब क्या भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अब श्रीमद् भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ, इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन दे रहे हैं कि बस अब तुमको खाली क्या करना है, मेरी शरण में आना है, और जो अपराध होंगे उनको मैं स्वयं ही खंडन कर दूंगा। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे, सातवें अध्याय में कहा गया था कि वही भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। मैंने आपको बताया ना 7.28 में भगवान ने क्या बताया, ये शांतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए वही भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर कोई सोच सकता है ना, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पापों से मुक्त हुए बिना शरणागति कैसे, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, तुम पहले शरणागति हो जाओ, मैं अपराध में तुम्हारे खुद साफ कर दूंगा। लेकिन भगवान ने पहले कहा तब तक तुम साफ नहीं होगे, अपने अपराधों को खत्म नहीं करोगे, तब तक तो तुम शरणागत हो ही नहीं सकोगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल कृष्ण की शरणागति होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। बस पापों से मुक्त होने का एक ही तरीका है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपराध हृदय में होते हैं, हृदय की गंदगी ही अपराध का भाव उत्पन्न करती है, और यदि हम पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही शरणागति है, यही अपराधों को खत्म करने का तरीका है। अगर हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहेंगे तो एक साइड से अपराध खत्म हो रहे हैं और दूसरी साइड शरणागति स्वतः हो रही है। कितनी करुणा है कृष्ण की कि एक चैतन्य महाप्रभु की असीम करुणा है हमारे ऊपर कि एक महामंत्र के द्वारा समस्त प्रॉब्लम, महामंत्र इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक ही हल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपराध भी खत्म हो जाते हैं, शरणागति भी हो जाती है। इस महामंत्र का दामन हमें सदैव पकड़े रहना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन। अब क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, माम एकम शरणम व्रज, तो हरि भक्ति विलास में शरण कैसे ग्रहण करना है उसके विषय में बताया है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणं गतः। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो, अनुकूल से संकल्प हो प्रतिकूल से वर्जन। यानी जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसे सिर्फ स्वीकार करना, और जो उससे प्रतिकूल हो यानी जो कार्य आप कर रहे हो वो भक्ति के यदि खिलाफ है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना धर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा बताया जाता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 8। सूत गोस्वामी बताते हैं धर्म सुनिश्चितम पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप अपने धर्म सुनिश्चित पुंसाम, आपके धर्म स्वनुष्ठित, आप अपना धर्म जो है वो बहुत ही अनुष्ठित तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से भी करते हो, लेकिन विश्वक सेना कथा सुया यदि भगवान के प्रति आपकी आपका आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, यदि भगवान की कथा को श्रवण करने का आपको इच्छा नहीं होती है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती है, नोत्पाद ये यदि रहते यदि इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो श्रम एव ही केवलम, घरों की तरह कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपके कार्य करने का एकमात्र रिजल्ट क्या निकलना चाहिए कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो सब फिजूल है। इसी तरह श्री प्रभुपाद जी भी यहाँ पर बता रहे हैं समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंचता, यदि भक्ति के अंदर उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए, वो कार्य करने ही चाहिए जिसमें पता है कि ये कार्य करने से हम भक्ति से दूर होते जाएंगे। यही लिखा ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, उन समस्त कार्यों का त्याग कर देना चाहिए जो आपको आपके कृष्ण से दूर करते हैं, उन समस्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए जो कि आपको आपसे आपके भगवान से दूर कर देते हैं, वो सारे दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए जो कृष्ण के अतिरिक्त आपको माया की ओर आकर्षित करने के लिए सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। हमें ऐसा पता है चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा वैष्णव का क्या आचार है, तो बोला सबसे पहले क्या है असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। सबसे पहले तो असत्य है जो केवल भौतिक मटेरियल चीजों की ओर आकर्षण कराते रहते ना, वो असत्य है, जो कृष्ण के विषय में नहीं बताते वो असत्य है, तो उनका पहले त्याग करो, आगे भक्ति के बारे में वैष्णव के बारे में पहले समझो, बाद में पहले पहला लक्षण वैष्णव का क्या है कि वो असत संग का त्याग करता है। यही चीज बता रहे अनुकूल से संकल्प हो प्रतिकूल से वर्जनम। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये एक विश्वास जो है ना वो यदि मनुष्य के अंदर हो जाए ना तो भक्ति बहुत सरल हो जाए। भक्ति फिर हम करें नहीं, भक्ति होती रहे। एक विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत हुए, कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, यदि मैं कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण करूंगा, यदि मैं कृष्ण की कथा का श्रवण करूंगा तो क्या होगा, मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हर परिस्थितियों में समस्त कठिनाइयों को दूर करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ और बाद में कठिनाइयों को फेस करूंगा, फेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है क्योंकि भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा सुचर, तो मेरी शरण में आ जाओ फिर चिंता रहित हो जाओ, मैं बैठा हूँ समस्त प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो कोई जरूरत नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण उसको संभाल लेंगे। कृष्ण ने कहा अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि, भगवान संभाल लेंगे। भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, मनुष्य को चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे परिवार का जीवन निर्वाह कैसे होगा। भगवान की यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या भगवान को ये भगवान की जिम्मेदारी नहीं है? भगवान उस कुत्ते को देता है जो गली में घूम रहा है, भगवान उस कीड़े को दे रहा है जो गटर में बैठा हुआ है, तो क्या भगवान मनुष्य को नहीं दे रहा? जब हम कुत्ते थे, कीड़े थे, या फिर गटर के, या फिर खटमल थे, तभी भी हमें खाने को मिल रहा था, जब हम भगवान को जानते नहीं थे। आज जब हम भगवान को शरण, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो क्या हमें भूखा मार देंगे? इतनी भी हमें हमारे अंदर श्रद्धा नहीं भगवान की भी? तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हमें ये कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन का निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण संभाल लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन के प्रगति के लिए कृष्ण को ही अविलंब समझे। यानी कि खुद को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, भगवान ही है वो सब कुछ करने वाले, मेरा कार्य क्या है, मैं अंश हूँ, मेरा कार्य सेवा करना है, आगे उसकी मर्जी है। यदि मेरे कर्मों के अनुसार मेरे भाग्य में सुख नहीं भी लिखा है तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब वो मेरा साथ देंगे, जब वो मेरे साथ होंगे, तो दुखदायक सफर भी मेरे लिए सुखदायक। जब हम सफर अच्छा होता है तो सफर की कठिनाइयां हमें ज्यादा, तो ये संसार में हम आए हैं, एक सफर है हमारे लिए, और हमारा लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण लोक को जाना है। तो यदि ये सफर बहुत कठिनाइयों से भी भरा हुआ है और हमारा हम सफर यदि कृष्ण है, तो ये कठिनाइयां हमें मुश्किल लगेंगी नहीं, क्योंकि वो थाम लेगा ना। जब जब हम गिरने को आएंगे, जब जब ठोकर लगेगी, जब जब चोट लगेगी, जब जब धक्का लगेगा, गिर रहे होंगे तो पकड़ लेगा। तो हमें भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत होने होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति स्वीकार। अरे किसी ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि आप कह रहे हो कि भगवान की शरण में आ जाएंगे, तो बहुत बड़ा राक्षस हो जिसने बहुत अपराध किए हो, मतलब राक्षस टाइप का लोग हो जिसने चारों नियम को, मतलब रूल्स को तोड़ा हो, सब कुछ ब्रेक किया हो और है ना गलत कार्य किए हो, वो भी ऐसा राक्षस लोग टाइप का है ना लोग भी अगर भगवान की शरण में आ जाएगा तो भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा ना अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य 9.31। तो श्री भगवान ने बोला हाँ फिर भी उसको साधु मानना चाहिए, तो बोला इतना गंदा है फिर भी साधु, तो बोला जब वो शरण में आ गया ना तब गंदगी खत्म हो गई। जब शरण में आ गया तो उसकी समस्त दुर्भाग्य, शरण में आने का मतलब ये नहीं कि खाली फोटो निकालो कि भाई मैंने दंडवत प्रणाम किया। यदि आपका हृदय भगवान के चरणारविंदों की तरफ आकर्षित हो गया, यदि भगवान के पवित्र नाम का जप करके आप संकल्प करते हो कि अब मैं भगवान वो कार्य नहीं करूंगा जो कि आपको अनुकूल है, इससे संकल्प केवल आपकी भक्ति के प्रति जो अनुकूल है वही कार्य करूंगा, और जो अनुकूल है वही करूंगा और प्रतिकूल है उनको सबको त्यागूंगा, ये होता है शरणागत का भाव। तो यदि वो शरणागत का भाव लेकर हम भगवान की शरण में आते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही जिस टाइम पर आया वह प्रकृति के समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। धर्म की विधि विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण की शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं होती। श्रीला प्रभुपाद ने कितना इजी कर दिया है भक्ति को, कितना आसान से, कितना हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि श्रीला प्रभुपाद के द्वारा हम लोगों को ये सब इतना सरलता से समझ में आया, वरना तो हम इस श्लोक को कभी समझ में नहीं आते। श्री प्रभुपाद ने क्या बताया कि धर्म की बहुत सारी विधि विधियां हैं, ध्यान योग की भी बहुत सारी हैं, लेकिन भगवान की शरण में जब चले जाते तो इतने सारे अनुष्ठान करने पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से सिर्फ खाली शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गवाने से बच जाता है। फिर आपको ध्यान योग कर्म योग ये सब योग नहीं करने पड़ते, खाली शरण में आ जाओ। टाइम नहीं है ना हमारे पास, प्रायण अल्प आयु से समय बहुत कम है, अब इतने सारे अनुष्ठान करते रहेंगे शरण में फिर तो बहुत टाइम के बाद जाना पड़ेगा। आओ उसी दिन से माला, श्रील प्रभुपाद ने कितना आसान किया, जिस दिन आप आते हो उसी दिन आपको माला पकड़ा देते हैं कि भाई हाँ माला करनी है आपको, ये शरणागति का लक्षण। और जब हम भक्ति के पहले क्लास में होते हैं, पहली कक्षा में होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तब भी हमको बोलते हैं माला करनी है आपको, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। और हम जब सारी कक्षा को पूरा पार कर लेते हैं और जब यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं भक्ति की, और तब भी क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यानी जो आखिरी डिग्री है वो पहले पहले दिन ही हम लोग को मिल जाती है, इतनी सरलता से भक्ति। क्योंकि कल भी और शरण में जाने से समय व्यर्थ समय गंवाने से बच जाता है, इस प्रकार वह तुरंत ही सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ शरण में जाने से ही अपराध का क्षय हो जाता है और उन्नति भक्ति में प्रगति स्टार्ट हो जाती है। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्षित होना चाहिए। भगवान इतने सुंदर है, भगवान का नाम ही कृष्ण है, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करने वाला, तो भगवान इतने सुंदर है कि श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आकर्षित होना चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है आकर्षण, तो भी अपना आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए उनकी तरफ। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वे सर्व आकर्षण है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदरता सर्वशक्तिमान छवि से आकर्षित होता है वह भाग्यशाली है। आपकी अब संसार में ना बहुत लोग को भाग्यशाली बोलते हैं, जिनके पास धन होता है, जिनके पास अच्छा घर होता है, अच्छी संतान होती है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तविक भाग्य उस दिन उदय होता है जिस दिन आप भगवान की सुंदर छवि की ओर आकर्षित होते हो। क्योंकि इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो उसी का, यानी भगवान की भगवानता का ही एक विकृत स्वरूप है, यानी छोटा छोटा। जैसे भगवान का क्या मतलब है, ईश्वर से समग्रस्य वीर्यस्य रसस्य श्रेय, ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भव इति गण। जब भगवान का मतलब होता है जिसके अंदर ये छह चीजें परिपूर्ण मात्रा में हो, मानी के पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा पूरी की पूरी सुंदरता, पूरे का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा शक्ति, पूरे का पूरा वैराग्य और पूरा का पूरा यश, ये सारा का सारा यदि किसी के अंदर है तो वो भगवान होता है। अब जब तक आप भगवान की ओर आकर्षित नहीं होंगे ना, तो इन सारी चीजों की तरफ अलग अलग से आकर्षित होंगे। कोई ज्ञान की ओर आकर्षित होता है तो सारा का सारा अपना आकर्षण ज्ञान को दे देता है कि मुझे ये सीखना है। कोई धन की तरफ आकर्षित होता है तो सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह धन कमाने के लिए परेशान होता है। कोई सुंदरता की ओर आकर्षित होता है तो बस खाली में कैसे सुंदर दिखूं, कैसे सुंदर दिखूं, इसी के लिए अपना जीवन समाप्त कर लेता है। कोई यश के लिए तो कोई वैराग्य के लिए अपना जीवन समाप्त कर लेता है। लेकिन आपका भाग्य उस दिन उदय होता है जब आप भगवान की ओर आकर्षित होते हो, क्योंकि जो भगवान की ओर आकर्षित होता है उसको ये सारी की सारी जो संपदाएं हैं वो कृष्ण के अंदर है, तो ये सिद्धि है, ये सबसे बड़ा भाग्य है कि हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होते हैं और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं वह सर्वोच्च योगी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्री प्रभुपाद ने बताया क्या कहा है भगवान ने, माम एकम शरणम व्रज। जो व्रज का भाव है, जो व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है उसकी ओर आकर्षित होने का संकेत दिया है कृष्ण ने। और यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ तो निराकार की तरफ ना आकर्षित होते हैं, कुछ परमात्मा की तरफ और कुछ साकार रूप की तरफ, लेकिन जो साक्षात व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। क्योंकि भगवान ने क्या बताया है, इसको बताने से पहले भगवान ने कहा सर्वगुह्यतम भूय, के संसार में सबसे जो सर्वगुह्यतम है, सीक्रेट्स में सबसे ज्यादा सीक्रेट, जो मोस्टेस्ट सीक्रेट बात बताई, वो क्या कहा, मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज। वो व्रज भाव को अपने हृदय में धारण करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अनन्य भाव से व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है, सबसे ज्यादा जो सीक्रेट ज्ञान है वो भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की ओर आकर्षित होना, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है, टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। इस श्लोक को सार कहते हैं, इसको चरम चरम श्लोक कहा जाता है। गीता का सार जो है वो इस पूरे इस श्लोक में, पूरी भगवद गीता का सार दिया गया है और ये संपूर्ण गीता का सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, लेकिन उनमें से शुद्ध भक्ति ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि क्योंकि ये सार है और सार में क्या बताया गया है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, भक्ति करो, तो जितने भी योग हैं उसमें शुद्ध भक्ति सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुच, मत करो, मत झको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत ही सार्थक है। श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवान ने कहा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, योग नहीं कर सके, कर्म योग नहीं कर सके, दार्शनिक योग नहीं कर सके, ध्यान योग नहीं कर सके, तो फिक्र मत करो, को मत डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष को अहम समस्त पापों से मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, खाली मेरी भक्ति करो। विशिष्ट, ये वाले शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्याग करे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है क्योंकि कृष्ण ने बोला है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, अगर अपराध लगाना तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे दूसरे कर्तव्य को पालन ना करके तुमने अगर कोई अपराध किया तो मैं तुम्हें उन समस्त अपराधों से मुक्त करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान ने अपना संदेश पूरा कर लिया है। भगवान को श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ बताना था वो यहाँ तक बता दिया है, और अब जब शास्त्र, कोई भी शास्त्र समाप्त होता है तो लास्ट में क्या लिखा होता है, फलश्रुति लिखी होती है कि इससे क्या होता है और इत्यादि। तो अब हम उसके बाद कल से हम ये पढ़ेंगे कि भगवान ने हमें जो बताया है उसकी फलश्रुति क्या है और उसके किस किस को बताना है, किसको नहीं बताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।